विचार चल रहा है पंचदशी ग्रंथ के कुष्ठस्थ दीप प्रकरण में। अच्छा, पाठ जो है धीरा तो नहीं चल रहा है ना? विचार चल रहा है पंचदशी ग्रंथ के अष्टम प्रकरण के विषय में, कूटस्थ दीप प्रकरण। ब्रह्म कूटस्थ है, अधिष्ठान कूटस्थ होता है, पर्दा कूटस्थ होता है। पर्दा यदि हिल जाए तो चित्र नहीं दिखेगा। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म हिलता नहीं है, मतलब निश्चल रहता है। तो उस कुटस्थ स्वरूप को यहां पर स्पष्टतया दीपन किया जा रहा है। दीपन मतलब प्रकाशन, प्रतिपादन किया जा रहा है, इसलिए इस प्रकरण का नाम हो गया कुटस्थ दीप। रामकृष्ण टीका है, भूमिका इस प्रकरण के ऊपर, इसका हम लोग विचार कर रहे थे। अत्र मुमुक्षोर मोक्ष साधनस्य ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञानस्य। मुमुक्षु के लिए साधन क्या है? ज्ञान। मुमुक्षु के लिए मोक्ष चाहिए और मोक्ष का साधन तो ज्ञानी है। तो कहा ब्रह्मात्मा एकत्व ज्ञान, अहम अस्मि ब्रह्म, मेरा स्वरूप ब्रह्म है। तो कौन सा ज्ञान? ज्ञान भी परोक्ष ज्ञान होता है, अपरोक्ष ज्ञान भी होता है। तो अपरोक्ष ब्रह्म की निवृत्ति परोक्ष ज्ञान से नहीं होती है ना? अयम सर्प रज्जु में जो भासरा है वो अपरोक्ष है, इसलिए यम रज्जु हो ऐसा परोक्ष ज्ञान होने मात्र से नहीं जाएगा, अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार ये जगत, अहम मनुष्य, अहम सुखी दुखी, यह ब्रह्म अपरोक्ष है, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए। लेकिन अपरोक्ष ज्ञान होगा महावाक्य का विचार से, महावाक्य विचारण अपरोक्ष ब्रह्म दी, पीछे बताया। और वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम, पदार्थ का ज्ञान न हो तो वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होता है। इसलिए तत्त्वमसि में तुम पदार्थ का ज्ञान होना चाहिए, अहम ब्रह्मास्मि में अहम पदार्थ का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन किस अर्थ का ज्ञान? शोधित अर्थ का ज्ञान। तम पदार्थ को शोधन किया जाए तो शोधन करना चाहिए, इतना कहने से नहीं होता है, शोधन करना पड़ता है। डॉक्टर जी बोलेंगे ये दवाई खानी है, तो खानी है, खाना चाहिए, बोलने मात्र से रोग की निवृत्ति नहीं होती है। इसलिए यहां पर टीकाकार ने कहा तम पदार्थ शोधन पूर्वकत्व, तम पदार्थों का शोधन करेंगे। कि अनादि काल से पूर्व संस्कार के कारण शरीर मन बुद्धि में अहम बुद्धि हो जा रही है। तो कितने जन्मों का संस्कार है नहीं गिन सकते, है ना? अनंत जन्म हुआ है। बहुजन्म दृढ़ाभ्यासत देहादिशु आत्मदिहिक क्षणात्। शास्त्र कहता है कि तुम नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव हो, लेकिन मैं कहने से शरीर भी मन बुद्धि आ जाता है पूर्व संस्कार के कारण। तो इधर शरीर के विषय में बताया, बाहर के विषय में जगत में सत्यत्व बुद्धि हो जाती है। पुनः पुनरुदित एवं जगत सत्यत्व धीर अपि, पीछे बताया ना, तो जगत में सत्यत्व बुद्धि और शरीर मन बुद्धि इंद्रियों में आत्मबुद्धि। इसलिए तुम पदार्थ अहम पदार्थ का शोधन पहले होना चाहिए, है ना। इसलिए बोला तम पदार्थ शोधन पूर्वकत्व। तो जगत में दो कोटि है, दो कोटि का ज्ञान हो रहा है। एक है इदम कोटि, दूसरा है अहम कोटि। एक है क्षेत्र कोटि, दूसरा है क्षेत्रीय कोटि। श्रीमद भगवद गीता में वहां से विवेक प्रारंभ किया गया। श्रीमद भगवद गीता में जैसे यहां पर तीन भाग हुआ है ना, पांच पांच प्रकरण को, वहां पर भी तीन भाग करो श्रीमद भगवद गीता को, तो एक भाग में कितने होंगे, छह होंगे ना। तो तीसरा भाग जो होगा कहां से शुरू होगा, तेरहवां अध्याय है ना। तो तेरहवां अध्याय का नाम क्या, क्षेत्र क्षेत्र का विभाग योग। योग मतलब, योग मतलब क्या, जोड़ना नहीं, योग का अर्थ साधन है ना, योग का अर्थ साधन। तो वहां पर जैसे विचार आया, यहां पर भी ऐसा ही विचार करना है। तो जो भी जाना जा रहा है उसको क्षेत्र समझ लो। इदम शरीरम कुंतेय क्षेत्रम इत्यविधीयते। तो घटपटादि जैसे जाना जा रहा है, विचार करने पर शरीर भी जाना जा रहा है। इदम मम शरीरम, ये मेरा शरीर। तो आप तो शरीर नहीं ना, आप तो जानने वाले हो गए। तो घटपटादि जैसे जाना जा रहा है उसी प्रकार शरीर भी जाना जा रहा है। तो जिससे जाना जा रहा है उसका नाम क्या होगा, क्षेत्रज्ञ होगा। और जो जाना जा रहा है उसका नाम क्षेत्रज्ञ होगा। तो ये जो है पाठ, ये प्रथम क्लास का पाठ हो गया, ये समझ लो। शोधन करना है ना, तो शोधन किए बिना महावाक्य के अर्थ का बोध नहीं होगा, ये टीकाकार का कहना है। और बार बार श्रवण मनन किए बिना शोधन होगा नहीं। इसलिए प्रथम क्लास में बैठ करके जो है विचार करना होगा। तो घटपटादि जैसे जाना जा रहा है शरीर भी जाना जाता है। शरीर मेरा अभी स्वस्थ है, अभी रुग्ण है, तो शरीर जाना जाता है। इसी प्रकार से इंद्रियां भी जानी जा रही है। मेरी इंद्रियां ठीक है, अभी चश्मा लग रहा है, तो किसको चश्मा लग रहा है, आत्मा को लग रहा है कि चक्षु को, चक्षु को लग रहा है ना। तो चक्षु जैसे जानी जा रही है, आत्मा भी उसी प्रकार जाना जाए, तो फिर आत्मा को फिर कौन जानेगा, है ना। इसका मतलब आत्मा नहीं जाना जाता है किसी से। तो कलम जैसे लिखने के लिए साधन हो गया करण, उसी प्रकार रूपादि दर्शन के लिए चक्षुरादि करण हो गया साधन, है ना। ठीक इसी प्रकार इंद्रिय तक गए, देखो इंद्र भी क्या हो गया, क्षेत्र दृश्य। उसी प्रकार मन भी जाना जाता है। मेरा मन अभी ठीक है, कोई भोजन खा लिया मन पसंद तो मन अभी ठीक है, अभी बोलो मत मेरा मन विचित्र है। तो आप शांत मन को भी जानते हो और विचित्र मन को भी जानते हो, तो मन क्या हुआ, दृष्टा हुआ कि दृश्य हुआ? दृश्य हो गया ना, मतलब क्षेत्र हो गया, क्षेत्र का तो दृश्य समझ लो। इसी प्रकार बुद्धि भी जानी जाती है ना? बुद्धि अभी स्थिर है, अभी अस्थिर है ना? स्थिर अस्थिर बुद्धि भी जानी जाती है। तो जानने वाला हो गया क्षेत्र ज्ञान, और जो जाना जा रहा है क्षेत्र ज्ञान, है ना? तो इतना यदि पक्का हो गया समझ लो, तो प्रथम क्लास मैं आप उत्तीर्ण हो गए, है कि नहीं? अब द्वितीय क्लास में बढ़ना चाहिए कि प्रथम क्लास में ही बढ़ते रहना चाहिए? द्वितीय क्लास में बढ़ना चाहिए। द्वितीय क्लास ये है, भगवत गीता का ही बोल रहे हैं, तो द्वितीय क्लास ये हुआ। दो कोटि तो हो गए प्रथम क्लास में, एक क्षेत्र कोटि और एक क्षेत्रज्ञ कोटि, है ना? एक इदम अर्थ और दूसरा हो गया अहम अर्थ। तो अब ये विचार करना है कि अहम अर्थ एक है कि शरीर सभी शरीरों में एक ही अहम अर्थ है, अथवा सभी शरीरों में अलग अलग अहम अर्थ है, ये विचार करना है। पकड़ में है ना? मतलब एक ही अहम अर्थ सभी शरीर में है, हाँ, कि अलग अलग अहम अर्थ है, ये विचार करना है। लेकिन अभी तो मालूम पड़ रहा है भाई अहम अर्थ अलग अलग है कि नहीं? कि मैं हूं, ये देवदत्त है, जगदत्त है, पिता है, पुत्र है। लेकिन ये जो भेद हो रहा है अहम अर्थ में, ये तो उपाधि के भेद को लेकर के हो रहा है। उपाधि तो क्षेत्र है, तो शरीर में तादात्म्य किए बिना अहम अर्थ में भेद नहीं आ सकता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं एको देव सर्वभूतेषु गुणः, एक ही देव है हमारे यहाँ, अनेक देव नहीं। वही जो है चक्र ले लिया तो उसका नाम विष्णु पड़ जाता है, त्रिशूल ले लिया तो उसका नाम शंकर हो जाता है। ये तो उपाधि को लेकर है ना, दिखता है उपाधि का धर्म, उपाधि दिखती है, उपाधि का अधिष्ठान नहीं दिखेगा। उपाधि का अधिष्ठान हो जाएगा, दिखेगा तो वो तो दृश्य हो जाएगा फिर, है कि नहीं? अब देखो ऐसा विचार करेंगे तो ये विचार हुआ कि उपाधि में भेद है, तो उपाधि में भेद होने पर भी है ना, उपाधि का अधिष्ठान में भेद वास्तविक होता नहीं है। अब अहम अर्थ देखो परिचिन्न नहीं हुआ, अहम अर्थ अब कैसे हो गया, व्यापक हो गया, समझ में ना? इसलिए एक ही अहम अर्थ है, अनेक अहम अर्थ नहीं है। आत्मा एक, आत्मा एक मतलब ऐसा नहीं समझना है कि आत्मा एक, हमारा स्वरूप एक है, गड़बड़ी तो इसमें हो जाती है ना। शास्त्र कहते हैं कि सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म है, इतना जानने से कुछ मिलने वाला नहीं है, है कि नहीं? सच्चित आनंद स्वरूप जो ब्रह्म कहता है शास्त्र, वो स्वरूप अपना है। इसलिए एको देव सर्वभूतेषु गुणः जो शास्त्र कहता है ना, वो अपना स्वरूप है। अब अहम अर्थ कितना हो गया, एक तो हुआ और कितना हुआ, व्यापक हो गया, अब परिचिन्न नहीं रहा देखो, है ना? तो ऐसा विचार करके परिपक्व होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए कि, और आगे बढ़ना चाहिए तृतीय क्लास के पाठ में, तब शोधन पूरा होगा। है ना। तो शोधन कैसे पूरा होगा तृतीय क्लास में? दो कोटि तो हो गई के इदम कोटि, दूसरा हो गया अहम कोटि, अहम अर्थ कोटि। लेकिन ये विचार करना है जो दो पदार्थ है दोनों सत्य है कि एक में दूसरा कल्पित है, है ना? दोनों की सत्ता पारमार्थिक है कि एक पारमार्थिक सत्ता में दूसरा कल्पित है, ये विचार करना है। हाँ, तो विचार करने पर ये निश्चय होगा, जैसे स्वप्नों में दिखने वाले तो बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन जिसमें दिख रहा है और जो देख रहा है वो कितने हैं, है ना, और वो सत्य है कि मिथ्या है? जिसमें भास रहा है और जिसको भास रहा है वो सत्य है कि नहीं? और जो भास रहा है, जो रसगुल्ला खा रहे हैं, तो रसगुल्ला मिथ्या हो गया, लेकिन रसगुल्ला जो खा रहा है वो सत्य है कि मिथ्या है? मैंने जो खाने वाला जो है, आप डॉक्टर है अभी, मान लीजिए आप डॉक्टर है अभी जागृत में, स्वप्नों में क्या हो गए? दूसरा कुछ हो गए, है ना? महात्मा बनना तो महात्मा बन के मान लो, है ना? तो महात्मा बन करके आप खा रहे रसगुल्ला, तो आप वहां पर सत्य है कि मिथ्या है? अब समझ में आएगी नहीं? तो आप जो खा रहे हैं ना वो भी मिथ्या है, उड़ने के बाद थोड़ी महात्मा बनेंगे, फिर जैसे थे ऐसे वो चिदाभास हो गया। महात्मा क्या हो गया? चिदाभास हो गया। इसलिए जो चेतन है ही नहीं, भले ही चेतन की तरह भासे महात्मा, है ना, वो भी कैसा हुआ? मिथ्या हुआ। इसलिए चिदाभास भी मिथ्या है, आज रसगुल्ला आदि खा रहे हैं वो भी कैसा है, लेकिन दोनों को जो प्रकाशित करने वाला है ना, वो सत्य है, वो सत्य है और एक ही है वो, और उसमें सब भास रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जागृत में समझना है, समझ में ना? इसलिए जागृत में भी क्षेत्र के किसने कितने होंगे? एक ही होगा। जैसे स्वप्न में अनेक खा रहे हैं, भंडारा चल रहा है, जितने भी भंडारा खाने वाले वो सब कल्पित है कि नहीं? आज रसगुल्ला वगैरह खा रहे हैं वो भी कैसे हैं? कल्पित होंगे कि नहीं होंगे? ठीक इसी प्रकार जागृत में भी समझना है, हो गए कि नहीं? ये भी सब क्या चल रहा है? हा ना, भोजन चल रहा है तो भंडारा चल रहा है, ये भी ऐसे ही चल रहा है ये कार्य, है ना? इसलिए क्षेत्र के यहां पर भी कितने हैं? अनेक नहीं है, और वो सत्य है। तो एक क्षेत्रज्ञ में क्षेत्र कैसा है? कल्पित। एक सत्ता से, क्षेत्रज्ञ की सत्ता से क्षेत्र भास रहा है, क्षेत्र सत्तावान हो रहा है, समझ में ना? इसलिए क्षेत्र जब बाधित हो गया, बाधित हो गया मतलब ना पहले था ना अभी है ना आगे वास्तविक होगा, है ना? अत्यंता भाव का निश्चय हो गया। जैसे रस्सी में सर्प ना पहले था ना अभी है ना आगे होगा, इसलिए क्षेत्र जो भास रहा है, क्षेत्रज्ञ में ना पहले था ना अभी है ना आगे होगा, तो क्षेत्र बाधित हो गया। दृश्य जो हो गया ना इदम अर्थ, वो बाधित हो गया धर्म में ना। जब दिखने वाला बाधित हो गया, मतलब दिखने वाला मिथ्या हो गया, तो फिर आप किसके क्षेत्रज्ञ होंगे? अरे भाई, क्षेत्र जब आपसे अतिरिक्त हुआ नहीं, क्षेत्रज्ञ ही क्षेत्र रूप से भासता है। क्षेत्र जब मिथ्या हो गया, क्षेत्र वास्तविक नहीं हुआ, तो आपका नाम क्षेत्रज्ञ पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। पुत्र हो तो आप पिता है माता है, अब पुत्र यदि न हो तो आप किसके माता पिता है, पकड़ में आया कि नहीं है। इसी प्रकार क्षेत्र यदि वास्तविक हो तो आपका नाम वास्तविक क्षेत्र में पड़ेगा, क्षेत्र की दृष्टि से उसका नाम पड़ता है क्षेत्रज्ञ। आज क्षेत्र जब बाधित हो गया तो क्षेत्रज्ञ की संज्ञा में बाधित हो जाएंगी। अब कैसा होगा वो, वही कूटस्थ होगा। उसी को कहते हैं यहां पर त्वम पदार्थ शोधित अर्थ ना। तो यहां तक विचार करना चाहिए, तब जाकर के शोधित जो अहम अर्थ है, शोधित जो त्वम अर्थ है, इसका एकत्व ब्रह्म के साथ होगा। यही बात यहां पर कह रहे हैं। देखिए त्वम पदार्थ शोधन पूर्वकत्व, त्वम पदार्थ का शोधन करेंगे तब जाकर के ब्रह्मात्मा एकत्व का ज्ञान होगा। इसीलिए ये जो प्रकरण है त्वम पदार्थ शोधन परम, त्वम पदार्थ का शोधन करने में तात्पर्य है इसका, ऐसा कूटसदीप हो गया। इस ग्रंथ को प्रारंभ करते हुए आचार्य, आचार्य कौन हो गए, स्वामी भारती तीर्थ जी, वो आचार्य है। अस्य ग्रंथस्य वेदांत प्रकरणत्वेन, यही ग्रंथ क्या है, प्रकरण, किसका प्रकरण है जी, यानी किसका प्रकरण हो गया, वेदांत का। और वेदांत कौन है यहां पर, उपनिषद, मुख्य वेदांत शब्द का अर्थ उपनिषद लेना है ना? तो ये तो उसका व्याख्यान है, इसलिए इसको भी वेदांत ग्रंथ बोल देते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं देखो वेदांत प्रकरणत्व ना, इसलिए वेदांत जो उपनिषद है उसका जो विषय होगा, अधिकारी होगा, है ना, संबंध होगा, प्रयोजन होगा, इसका भी वही होगा, है ना। फिर इसका अधिकारी कौन है भाई, साधन चतुष्टय संपन्न होगा, है ना। आज यदि नहीं है तो प्रयत्न करना चाहिए अधिकारी बनने के लिए, है ना। और उपनिषद का विषय है जीव ब्रह्म का एकत्व, जीव ब्रह्मे बना पर, इसका भी वही होगा। अब प्रयोजन क्या होगा पंचदशी पढ़ने पर, इसलिए अध्ययन का प्रयोजन क्या है, अध्ययन का प्रयोजन तो ज्ञान ही है, दूसरा और कोई प्रयोजन यहां पर नहीं है। इसीलिए विवेक चुड़ावली में कहते हैं ना, वैराग्यम च मुमुक्षुत्वम, वैराग्य हो और यदि मुमुक्षु हो, तस्मिनेव अर्थवंतस्युः समादयः। जैसे योगी लोग हाँ मन को एकाग्र भी कर लेते हैं, यम नियम आसन भी कर लेते हैं, है ना, लेकिन इतने मात्र से उनको मोक्ष मिल जाएगा, नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, वैराग्य नहीं है और मुमुक्षु नहीं है। जिस पुरुष में वैराग्य मुमुक्षु हो, विवेक पूर्वक वैराग्य मुमुक्षु हो, उसी पुरुष में ही समदमादि अष्टांग योग फलीभूत होते हैं, है ना। इसलिए यहां पर अधिकारी साधन चतुष्टय संपन्न हो गया, विषय हो गया जीव ब्रह्म का एकत्व, प्रयोजन हो गया मोक्ष, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। असंबंध समझ लो, प्रतिपाद्य हो गया शुद्ध ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, और प्रतिपादक हो जाएगा ग्रंथ, प्रतिपाद्य प्रतिपाक भाव संबंध हो जाएगा, अथवा कर्म कांड के साथ ज्ञान कांड, दोनों में क्या होगा, साध्य साधन भाव होगा। कर्म कांड करके चित्त शुद्ध किया हो तब तो ज्ञान कांड का अधिकारी बनेगा, है ना, नहीं तो परमात्मा को जानने की इच्छा ही नहीं होगी कर्म न किया हो तो। निष्काम कर्म न किया हो तो परमात्मा को जानने की इच्छा होगी, तड़पन होगा, नहीं हो सकता है, धन में इसलिए स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् असाधनम च भवेत पुंसम वैराग्यादि चतुष्टयम्। वैराग्यादि चतुष्टय तब होता है वर्ण आश्रम के आधार पर अपना कर्म निष्काम भाव से किया हो तो यही समझ लो। इसलिए उपनिषद के जो अनुबंध चतुष्ट हो गए अधिकारी आदि इस पंचदशी ग्रंथ के भी वही होंगे। ये बोलते हैं तत्वत्ता सिद्धिमयी प्रत्यय त्वं पद लक्ष्य वाच्य कुटस्थ जीवो सदृष्टान्तं भेदना निर्देशते। कहीं कहीं वाचार्थ को लेकर के शब्दबोध होता है और कहीं कहीं लक्षार्थ को लेकर के शब्दबोध होता है ना? बता दिया उस दिन की गंगायाम जलम, गंगा जी में जल है तो वाचार्थ से हो जाएगा, लक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गंगायाम घोषा है तो लक्षार्थ लेना होगा, है ना? इसी प्रकार तत्त्वमसि कहता है छांदोग्य श्रुति, तो यहां और वाचार्थ को लेकर के ब्रह्म कैसा देखा तो होगा नहीं, है ना? इसलिए क्या करना होगा, लक्षार्थ तम पद का लक्षार्थ ले लेंगे। और लक्षार्थ कब होगा निश्चित, जब विवेक करेंगे तो तम पदार्थ क्या है, अपना स्वरूप क्या है, इसका विचार करेंगे तो वाचार्थ को छोड़ देंगे, है ना? जैसे घटपट आदि में अनात्म बुद्धि होती है, उसी प्रकार विचार करने पर मन बुद्धि में भी अनात्म बुद्धि होगी, है ना? इसलिए तम पदार्थ शोधित होगा, वो है लक्षार्थ। वाचार्थ होगा अंतकरण विशिष्ट चेतन होगा, है ना? लक्षार्थ क्या होगा, कुटस्थ ब्रह्म होगा। यहां पर लिखते हैं देखो, त्वं पद लक्ष्य वाच्यौ कुटस्थ जीवौ, त्वं पद का लक्ष्य हो गया कुटस्थ ब्रह्म, है ना? और त्वं पद का वाच्य हो जाएगा जीव हो जाएगा, तो जीव का एकत्व ब्रह्म के साथ होगा नहीं, कुटस्थ ब्रह्म का हो जाएगा। तो कुटस्थ ब्रह्म तम पद का लक्ष्य है, लक्ष्य होगा। इसीलिए यहां पर दृष्टांत को लेकर सदृष्टांतम दृष्टांत देना पड़ता है, इसलिए दोनों में भेद है, है ना? कुटस्थ अलग है और जीव अलग है। ऐसा क्यों विचार कर रहे हैं, क्योंकि शंका उठती है, ये जो अहम अहम करके जिसका अनुभव हो रहा है यही जान लेगा बुद्धिवृत्ति को लेकर घटपट आदि को, इससे अतिरिक्त कोई कूटस्थ चित है मानने की क्या आवश्यकता है, समझ में? बुद्धि को लेकर के चक्षुर इंद्रियों के द्वारा ये घड़ा है ज्ञान हो जाएगा प्रमाता को, अंतक में विशिष्ट चेतन को, है ना? किससे होगा, बुद्धिवृत्ति से, है ना? यही तो ज्ञान है, है ना? ये जो घड़े का ज्ञान हो रहा है आयम घट, यही तो ज्ञान है। इसलिए इससे अतिरिक्त और कोई कुटस्थ चित है ऐसा मानने की क्या आवश्यकता है, है ना? तो ऐसी शंका होती है, शंका करते भी लोग हैं, इसलिए कुटस्थ ब्रह्म को निर्विशेष ब्रह्म को नहीं मानते हैं, ज्ञान को अनित्य मानते हैं, है ना? इसलिए यहां पर कह रहे हैं ज्ञान दो प्रकार का है, एक कुटस्थ चित ज्ञान नित्य ज्ञान और एक अनित्य ज्ञान है, गण ज्ञान पड़ ज्ञान जो हो रहा है अनित्य ज्ञान। अभी दो ज्ञान को मानने जा रहे हैं, मनाने जा रहे हैं हम लोगों के लिए, एक कुटस्थ ज्ञान होता है और दूसरा क्या होता है, कुटस्थ ज्ञान मतलब नित्य ज्ञान, है ना? और दूसरा होता है अनित्य ज्ञान। तो अनित्य ज्ञान तो आने वाला जाने वाला हो रहा है, है ना? ये पुस्तक है तो पुस्तक का ज्ञान हो रहा है, और उसके बाद ये कलम है तो कलम का ज्ञान हो रहा है। तो जिस समय कलम का ज्ञान हो रहा है तो उस समय पुस्तक का ज्ञान हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ज्ञान नष्ट हो गया कि नहीं? पुस्तक का ज्ञान नष्ट हो गया, लेकिन पुस्तक का ज्ञान जिससे भास रहा था है ना, वो अभी है कि नहीं? जिस समय कलम का ज्ञान हो रहा है ना, है तो वो ज्ञान क्या आने वाला जाने वाला है? नहीं है। ये घट ज्ञान पड़ ज्ञान जो बोलते हैं ना, ये वृत्ति को लेकर के बोलते हैं। चक्षु का संबंध होने पर अंतकरण में एक वृत्ति होती है, अंतकरण का परिणाम को वृत्ति बोलते हैं, है ना? वो वृत्ति जड़ है, वो जड़ है तो उसको चित्त ज्ञान कैसे कहा जाएगा, है ना? तो समझना चाहिए उस वृत्ति स्वच्छ है, अंतकरण स्वच्छ होने से अंतकरण का परिणाम जो वृत्ति है भी स्वच्छ हो जाएगा, है कि नहीं? स्वच्छ होगा वो। मान लो चीनी जो मीठा है, आ चीनी से कुछ बनाएंगे वो क्या होगा, कड़वा होगा कि मीठा होगा? तो वो भी मीठा होगा, है ना? ठीक, इसी प्रकार अंतकरण स्वच्छ है सात्विक अंश को लेकर के, इसलिए अंतकरण का जो परिणाम होगा वृत्ति वो भी सच्च होगा, इसलिए उस सच्च में वो चित्त का प्रतिबिंब पड़ता है, ध्यान में ना, इसलिए उसको भी ज्ञान बोल देते हैं। किसको ज्ञान बोल देते हैं, है ना? अनित्य जो ज्ञान हुआ, घट ज्ञान पड़ ज्ञान, ये चित्त का नाम हुआ कि वृत्ति का नाम हुआ? किसका नाम हुआ? अनित्य ज्ञान किसका नाम हुआ, चित्त का नाम हुआ कि वृत्ति का नाम हुआ? नहीं, वृत्ति का भी नाम नहीं है। वृत्ति में जो चेतन का प्रतिबिंब पड़ा, वृत्ति प्रतिबिंबित चेतन, चिदाभास समझ लो। और चिदाभास कहने से केवल चित हुआ कि जो है उपाधि भी हुई? हाँ, अब समझ में है कि नहीं है, है ना? इसलिए वृत्ति विशिष्ट घटाकार वृत्ति विशिष्ट जो चेतन है ना, उसका नाम ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान हुआ? अनित्य ज्ञान। इसलिए अनित्य ज्ञान से ना वृत्ति को समझेंगे ना केवल चित्त को समझेंगे, मन में ना? चेतन जो आत्मा है वो तो चित्त रूप है ही, है ना? उसका प्रतिफलन पड़ने के कारण है ना, वृत्ति जड़ होने पर भी चेतन की तरह मालूम पड़ती है, है ना? इसलिए वृत्ति को ज्ञान शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो गौण प्रयोग है। वृत्तो ज्ञान से उपचार, तो अनित्य ज्ञान हो गए, है ना? तो जिससे पुस्तक भास रही है और पुस्तक की वृत्ति भास रही है, अनेक वृत्तियां हैं, एक दिन में कितनी वृत्तियां होती है कह नहीं सकते, है ना? लेकिन सभी वृत्ति को जानने वाला वो कितना होगा? एक ही होगा, वो है नित्य ज्ञान। इसलिए केनोपनिषद में कहा गया प्रतिबोध विदितम मतम, प्रतिबोध हो गया वृत्ति, घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति, सभी वृत्तियों में एक साक्षी चेतन है, है ना? वो आने वाला जाने वाला नहीं है, है ना? वो सभी वृत्तियों में एक चेतन है, एक ही है, अनेक नहीं है, है ना? और वही अपना स्वरूप है, तो उसका फल क्या होगा? अमृतत्वम ही विन्दते, कहने उपनिषद कहती है, है ना? तो इसलिए दो ज्ञान को मानना आवश्यक है, एक नित्य ज्ञान को और दूसरा अनित्य ज्ञान को, है ना? यही बात यहां पर कहने जा रहे हैं। तो प्रथम श्लोक देखा जाए, खादित्य दीपिते कुंडे दर्पणादित्य दीप्तिवत् कूटस्थ भासितो देहो धिष्ठ जीवेन भाष्यते। तो पूर्वार्ध में है दृष्टांत है ना, और उत्तरार्ध में है दृष्टांत है ना। दृष्टांत अपने लिए होता है ना। दृष्टांत किसके लिए होता है कि दूसरों को केवल समझाने के लिए अपने लिए होता है दृष्टांत है ना। दृष्टांत भले ही समझाने के लिए हो दूसरे के लिए, दृष्टांत अपने के लिए होता है। तो देख लो, तो प्रसंग चल रहा है, दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, इसको नहीं भूलना है। श्लोक याद हो या ना हो, शब्द याद हो या ना हो, लेकिन शब्द का जो तात्पर्य है ना, वो आना चाहिए वो अपनी बुद्धि में, ध्यान में रखना। इसलिए दो ज्ञान है ना, दो ज्ञान है, एक कूटस्थ ज्ञान है नित्य ज्ञान, और दूसरा है अनित्य ज्ञान। एक लक्षार्थ है तम पद का, और दूसरा हो गया वाच्यार्थ। देखो कहते हैं, ख आदित्य दीपिते कुड्डे। कुड्डे जानते हैं, कुड्डे क्या होता है? कुड्डे वाला दीवार, ये तो हो गया था ना आप लोगों का श्लोक। तो कुड्डे मतलब क्या है? दीवार हो गया। तो वो प्रकाशित होता है, प्रकाशित होता है किससे? बोलते हैं देखो, ख आदित्य दीपिते कुड्डे। ख मतलब आकाश, और आकाश में आदित्य है भगवान सूर्य, भगवान सूर्य है ना, और उसका प्रकाश होता है, प्रकाश होता है ना। तो सूर्य का संबंध है दीवार के साथ यहां पर है क्या? नहीं है। सूर्य का साक्षात संबंध नहीं है ना, परंपरा सूर्य का प्रकाश यहां पर पड़ता है, इसलिए प्रकाश के द्वारा सूर्य का संबंध है दीवार के साथ। जैसे ये बल्ब से दिख रहा है, दीवार दिख रहा है ना, तो बल्ब बंद कर देंगे तो दीवार दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा ना। पूरा अंधकार हो तो अलग बात है, थोड़ा बहुत तो दिखाई देगा, थोड़ा बहुत दिखाई देगा। तो वो किससे दिखाई दे रहा है? सूर्य के प्रकाश से दिखाई दे रहा है ना। ध्यान में रखिए, ये प्रथम श्लोक द्वितीय श्लोक समझ में आ जाएगा ना, आगे सब समझ में आएगा है ना, ध्यान में रखो। तो ख आदित्य दीपिते कुड्डे है ना, आकाशस्थ जो सूर्य है उसके प्रकाश से वो दीपित मतलब प्रकाशित है ना, प्रकाशित होता है कौन? कुड्य दीवार होता है। लेकिन क्या हो गया कि बाहर में अनेक दर्पण रख दिया बाहर में, और दर्पण जो है एक प्रकार का होता है कि अनेक प्रकार का होता है? अनेक प्रकार का हो जाता है, चतुष्कोणाकार भी हो जाएगा, त्रिकोणाकार भी हो जाएगा, गोलाकार भी हो सकता है। तो अनेक व्यक्ति पकड़ करके जो है इधर प्रतिबिंब छोड़ दिया है ना। तो आकाश में जो सूर्य है उसका प्रतिफलन पड़ता है स्वच्छ दर्पण में, दर्पण स्वच्छ हो तो है ना। तो वो दर्पणस्थ जो सूर्य है उसका प्रकाश प्रतिफलन प्रकाश दीवार में छोड़ दो है ना, तो जितने दर्पण है उतने प्रतिफलित सूर्य हो जाएंगे। आज सभी प्रकाश का समस्त दर्पणस्थ प्रकाश का संबंध दीवार के साथ पड़ेगा है ना। इसलिए दीवार जो है सूर्य के प्रकाश से भी दिखता है, आकाशस्थ सूर्य प्रकाश से, और दर्पणस्थ सूर्य के प्रकाश से भी दिखता है ना। ये कह रहे देखो, दर्पण आदित्य दीप्तिवत। दर्पण आदित्य मतलब दर्पणस्थ आदित्य, दर्पण रहने वाला आदित्य है ना। तो दर्पण में आदित्य जो है वो सत्य के झूठा है, कोई कह रहे सत्य भी सूर्य इतना बड़ा है दर्पण में कैसे रहेगा? लेकिन दर्पण में जो दिख रहा है सूर्य वो सत्य होगा कि मिथ्या होगा? मिथ्या हो गया, मिथ्या हो गया ना। इसलिए मिथ्या वस्तु से भी कुछ कार्य हो जाता है, होता है ना, मिथ्या से भी कार्य होता है। इसे स्वप्न में मान लीजिए, स्वप्न में आप देख रहे हैं, अमेरिका को देख रहे हैं, है ना, तो स्वप्नों के जो चक्षु है सत्य है कि मिथ्या है? हाँ, लेकिन देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं ना। हाँ, तो आप जो राजा बन गए, राजा बन गए, तो राजा झूठा है कि सच है? सपनों का मिथ्या हो गया ना। वो राज करता है कि नहीं करता है? हाँ ना, इसलिए मिथ्या से भी कार्य होता है। केवल मिथ्या से नहीं समझना है, मिथ्या में भी अधिष्ठान की सत्ता रहेगी, अधिष्ठान की सत्ता से मिथ्या भी सत्य की तरह मालूम पड़ता है, ये तात्पर्य है ना। इसलिए सूर्य का प्रतिमा पड़ा दर्पण में, है ना, वो जो है प्रकाश रूप न होने पर ही प्रकाश रूप की तरह मालूम पड़ता है ना, तो उसी से दीवार प्रकाशित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार दृष्टांत समझना है, उत्तरार्ध में दृष्टांत कह रहे हैं, कूटस्थ भाषितो देहो, ये कूटस्थ चेतन है, कहां पर है भैया? देह में कूटस्थ चेतन है ना, कूटस्थ व्यापक है भी, इसमें कैसे रहेगा? कूटस्थ तो व्यापक हो गया ना, तो इसमें कैसे रहेगा? परिचिन्न में कूटस्थ कैसे रहेगा? आत्मा तो व्यापक है, परिचिन्न में कैसे रहेगा? तादात्मा होकर के रहेगा, कैसे रहेगा? तादात्मा होकर के रहेगा, है ना, ऐसा है। ये तो जागा कैसे मिलेगी, है ना, व्यापक को जागा कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकती है, लेकिन तादात्म्य रूप से रहेगा। सत्य मिथ्या में जो रहेगा, संसर्ग रूप से अध्यस्त होकर रहेगा, है ना। इसलिए कूटस्थ जो चेतन है उसके द्वारा देह भासता है, देह भासता है। अच्छा, और इस शरीर में बुद्धि भी है, है? जैसे घड़ा में जल रख दिया, आज जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा, हो गए कि नहीं? घड़े में जल रख दिया, जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा, तो सूर्य कहां पर रहा? जल में रहा ना, है कि नहीं? प्रतिबिंब रहा। हाँ, और जल भी कहां पर है? घड़े में है ना, तो प्रतिबिंब अधिष्ठान के बिना नहीं रह सकता है ना, तो बिंब हो गया यहां पर कुटस्थ, सूर्य की तरह, है ना, सूर्य की तरह हो गया। और घड़े की तरह कौन हो गया यहां पर? शरीर, घड़े की तरह शरीर हो गया। और जल की तरह कौन हो गया? अंतकरण को, बुद्धि को, सूक्ष्म शरीर को, है ना, बुद्धि ले लो, यहाँ बुद्धि शब्द आया, है ना। और बुद्धि जो है सच है, जैसे दर्पण सच है, इसी प्रकार बुद्धि भी सच है। इसलिए सच बुद्धि में कूटस्थ बिंब का प्रतिफलन होता है, उसी का नाम क्या है? चिदाभास। चिदाभास कहेंगे, अथवा प्रमाता कहेंगे, अथवा जीव कहेंगे, ये कहा है। तो जीव हो गया प्रतिबिंब चेतन, तो उसके द्वारा भी शरीर जाना जाता है, जाना जा रहा है, ये शरीर है, ये जाना जा रहा है, हो गया कि नहीं? तो विचार ये करना है, जैसे वहां पर दो दो से प्रकाशित हो रहा है दीवार, आकाशस्थ सूर्य से प्रकाशित हो रहा है, और दर्पणस्थ सूर्य के प्रकाश से भी प्रकाशित होता है। ठीक इसी प्रकार शरीर दोनों से प्रकाशित होता है, है ना? हाँ, जैसे वहां पर दर्पण को हटा देंगे, दर्पण को हटा देंगे तब भी दीवार दिखे देगा, दिखेगा ना, किससे दिखेगा? सामान्य से। इसी प्रकार शरीर भी दिखे देगा, है ना, तो किससे दिखे देगा? साक्षी से दिखे देगा, साक्षी से दिखे देगा। जैसे देखो कैसे, तब पहले तो हुआ ये शरीर है, शरीर है तो किससे प्रकाशित हो रहा है, चिदाभास से, ये मेरा शरीर है, पकड़ में है ना। लेकिन ये इस शरीर को मैं जान रहा हूं, है ना, ये शरीर गोरा है, शरीर काला है, ये किससे होगा, ये साक्षी से होगा, ध्यान दीजिए, किससे होगा, साक्षी से, है ना। ये पुस्तक का ज्ञान भी आपको भास रहा है, जिस समय आपको ये पुस्तक का ज्ञान, शरीर का ज्ञान हो रहा है, उस समय ज्ञान में आपको संशय है क्या? शरीर का ज्ञान मुझे हुआ कि नहीं हुआ, संशय नहीं होता है। जैसे सुख हो रहा है आपको, दुख हो रहा है, सुख हो रहा है कि दुख, सुख हो रहा है कि सुख नहीं हो रहा है, ऐसा संशय होता है क्या? नहीं होता है। साक्षी से जो प्रकाशित होता है उसमें संशय नहीं होता है, जैसे सुख दुख में संशय नहीं होता है, पढ़ में ना। इसी प्रकार से शरीर का जो भान आपको हो रहा है, उस समय शरीर का ज्ञान मुझे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, संशय होता है क्या? नहीं होता है ना। और ज्ञान होने के बाद मुझे ज्ञान हुआ था कि नहीं हुआ था, थोड़ा सोचते हैं, हाँ, जैसे मुझे सुख हुआ था कि नहीं हुआ, थोड़ा सोचते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। इसी प्रकार शरीर के ज्ञान में भी ऐसा होता है, हाँ, संशय कभी होता नहीं है। तो किसके कारण नहीं होता है? साक्षी के कारण, साक्षी से प्रकाशित होता है। इसलिए शरीर, जिस समय शरीर का ज्ञान हो रहा है, हाँ ना, चिदाभास से, उसी समय साक्षी से भी होता है। किसका? शरीर का भी होता है, शरीर के ज्ञान का भी होता है, और किसका होगा? चिदाभास का भी होगा। अहम शरीरम जानामि, जैसे पुस्तक को मैं जान रहा हूं, हो गया ना भैया, ठीक इसी प्रकार शरीर को मैं जान रहा हूं, ये साथे साथ किसका होगा, किस किस का होगा? अहम कहने से चिदाभास का हो रहा है, जो आप शरीर में बुद्धि में अहम बुद्धि करते हो, वो हो गया अहम अर्थ, वाचार्थ हो गया, चिदाभास हो गया, उसका ही भान हो रहा है। किसी से होगा? कूटस्थ से हो रहा है। ये दो कारण देखो, है ना, जिससे अहम अर्थ चिदाभास भास रहा है वो हो गया कूटस्थ, कूटस्थ से अहम अर्थ ही भासता है, है ना। तो अहम अर्थ कूटस्थ से भास रहा है, उसके साथ साथ शरीर भी भास रहा है, और शरीर का ज्ञान भी भास रहा है। ज्ञान मान लो कौन? वृत्ति, अंतकरण जो वृत्ति हुई, शरीराकार वृत्ति हुई, पुस्तकार वृत्ति की तरह वो कूटस्थ भाष रहा है। इसलिए तीनों एक कूटस्थ से होगा, इसलिए दो प्रकार का ज्ञान हो गया, एक कूटस्थ ज्ञान हो गया और एक कौन हो गया? चिदाभास अनित्य ज्ञान हो गया। इसलिए दो ज्ञान को मानना आवश्यक है। इसका विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।